तो आइए जरा पारा शुरू करते हैं, और पारे के शुरू में ही हमें पारे का थीम और ये सारी चीजें मिलेंगी। सूरत अल अनफाल आयत नंबर 41, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वालमू अन्नमा गनिमतु मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वबनिस सबील। और जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो, इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबत दारों और यतीमों का और मिसकीनों का और मुसाफिरों का। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा है, जो दिन हक पर बातिल की जुदाई का दिन था, जिस दिन दो फौजें भिड़ गई थीं, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और इसमें क्या हुआ था, हिजन तुम बिलुद्वतिद दुनिया वहुम बिलुद्वतिल कुस्वा, जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वो दूर वाले किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे था। अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्ते मुअय्यन पर पहुंचने में मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन अल्लाह को एक काम तो कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर यानी यकीन जानकर हलाक हो, और जो जिंदा रहे वो भी दलील पर हक पहचान कर जिंदा रहे। बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और फिर क्या हुआ, इस जुरी का हुमुल्लाहु फी मनामी का कलीला, कुछ फिगर्स हैं इधर, जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में इनकी तादाद कम दिखाई, अगर इनकी ज्याती दिखाता तो तुम बुजदिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया, वो दिलों के भेदों से खूब आगाह है, जबकि इसने बवक्ते मुलाकात इन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम कर दिखाया और तुम्हें इनकी निगाहों में बहुत कम दिखाया, ताकि अल्लाह ताला इस काम को अंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था, और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। यहाँ से आगे फिर कुछ आदाब हैं, नोट कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ीहा, यानी मैदान जंग में दुश्मन से मुकाबले के कुछ आदाब गिनते जाइएगा पॉइंटर के साथ। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी मुखालिफ फौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह को याद करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो, और अल्लाह की और इसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो। आपस में इख्तलाफ ना करो वरना बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्रो सहार रखो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब ये तो था क्या करो और अब क्या ना करो। वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरं वरियान्नास, और इन लोगों जैसे ना बनो जो इतराते हुए आए और लोगों में खुदनुमाई करते हुए अपने घरों से चले और अल्लाह की राह से रोकते थे। जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह तला इसे घेर लेने वाला है। क्या हुआ था उस वक्त, इस ज़य्यन लहुम शैतानु आमालहुम, जबकि इनके अमाल को शैतान इन्हें जीनतदार दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हिमायती हूँ, लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुई तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया और कहने लगा, मैं तुमसे बरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। एक कबीले के सरदार की तरफ इशारा। इसी तरह मैदान जंग में कुछ मुनाफिकीन की कॉन्स्परेसीज भी होती थी, उसका तस्करा। इस यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरद, जबकि मुनाफिक कह रहे थे और वो भी जिनके दिलों में रोग था, कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है, जो भी अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह तला बिला शक को शुबा गलबे वाला और हिकमत वाला है। लिहाजा अब उनके इस हाल पे थोड़ी सी तवज्जो करवाई गई नबी सल्लम को। वला उतर आए यतवफ्फल्लज़ीन कफरू, काश के तू देखता जबकि फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज करते हैं, इनके मुंह पर और पीठों पर मार मारते हैं और कहते हैं तुम जलने का अजाब चखो। बदर के मकतूलीन की तरफ इशारा। ज़ालिका बिमा कद्दमत अयदीकुम, ये बस अब इन कामों के हैं जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, मिसल फिरौनियों के हाल के और इनके अगलों के, कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया। यहाँ फिरौनियों की बात क्यों आई, कि वो भी बदर के कुएं में गिराए गए और फिरौनी भी पानी में डुबोए गए थे। कदाबी आली फिरौन, कसूर क्या था, और इनके अगलों के, कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयात से कुफर किया, बस अल्लाह ने इनके गुनाहों के बायस इन्हें पकड़ लिया। और हकीकत ये है कि इन अल्लाह कवीयुन शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला यकीनन कुव्वत वाला और सख्त अजाब वाला है। यहाँ तक रुकने को दिल ही नहीं चाहा सच पूछिए तो, क्योंकि बदर से मुतल्लिक ये सारे वाक़यात हैं। तदब्बुर और अमल कर लेते हैं इन आयात पे। अमल क्या है? अल्लाह ताला को अपना ज़िक्र इस कदर महबूब है कि इस हालत में भी ज़िक्र का हुक्म दिया जब जंग लगी हो। आपस के झगड़े से दूसरों को खबरदार करें, क्योंकि आपस का झगड़ा शिकस्त की बुनियाद है। यानी मुसलमान जब लड़ते हैं तो उनकी हवा उखड़ जाती है। इतराना और खुदनुमाई दिल की मोहलक बीमारियां हैं। ख्वाबों की ताबीर बा इल्म शख्स से पूछनी चाहिए जो ख्वाबों की ताबीर अच्छी तरह जानता हो। अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करता है तो इसके असबाब भी फराहम करता है। इस्लामी शरीयत पर दिलों को इकट्ठा करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर तंगी और मुसीबत की घड़ी में, और गौर व फिक्र के गोशे सब्र, साबित कदमी और अल्लाह का जिक्र फतह और नुसरत के बड़े असबाब हैं। आपस के इख्तलाफात को मशवरे और एक दूसरे की तरफ रुजू करते हुए ख़त्म करना है। अल्लाह के रास्ते में घरों से निकलने का मकसद अल्लाह की खुशनूदी और दीन की सरबुलंदी होना चाहिए। बतर से बचना है, अल्लाह की दी हुई नेमतों को गुनाहों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये तो आयात थी, आगे इसका कुछ असर आगे हमें दिखने वाला है, लेकिन यहाँ इस पारे के थीम में तीन चीज़ें लिखवाने वाली हूँ, ज़रा सी तवज्जो चाहूँगी। बदर से तबूक तक, पहली चीज़। पारे के आगाज़ में ही हमने देख लिया बदर का जिक्र है, और पारे की आखिरी आयात में तबूक से वापसी का जिक्र है। बीच में गलबा इस्लाम की बात होगी। हो अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीन अल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्ली ही। तो लिहाजा तादाद से धोखा ना खाओ, ये है मेन चीज़। आप इस बारे में से गिनती जाइएगा हेड काउंट का, कितनी जगह जिक्र हो रहा है। ना सिर्फ ये कि बदर और तबूक, बल्कि मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह में, बल्कि पारे के आखिर तक आएगा। वो निकला, वो नहीं निकला, थोड़े निकले, ज़्यादा है, और बिल्कुल बीच में ग़ज़वे हुनैन में कसरत की बात है। तो इस पारे के थीम में है तादाद से धोखा ना खाओ। जैसे आज मुसलमान आलमोस्ट 2 बिलियन हैं, लेकिन इस तादाद से धोखा ना खाइए, क्योंकि इन सारे मुसलमानों का ईमान एक पलड़े में रखिए और दूसरे में सिर्फ सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखा जाए तो वो ज़्यादा होगा इनकी नस्बत, इल्ला माशाल्लाह। तो इस बारे में आगाज़ में बदर का जिक्र है, बदर के वाक़यात हैं। बदर के बाद के वाक़यात से ये पारा क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि बदर एक तारीख साज जंग साबित हुई थी जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। बड़े थोड़े से लोगों से अल्लाह ने वो काम ले लिया जो बात पे बहुत ज़्यादा भी ना कर सके। वही मुसलमान जो कल तक मक्का में दबे हुए थे, आज अजीम व शान फतह पाकर कामयाबियां हो रही, दिलों पे उनका रोब डल रहा है। बीच में कुछ अखलाकियात सिखाई जा रही हैं। जब भी हमने एक लिस्ट लंबी सी देखी कि मैदान जंग में भी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे थे, पढ़ना पढ़ाना नहीं छूटा सहाबा का, चाहे वो मैदान जंग में थे या घरों में होते थे। और ये वो आदाब अभी आपने सुने कि जिनकी मौजूदगी ने मुसलमानों को फतह भी दी और इज्जत भी दी, और वो तारीख के सर पर झूमर साबित हुए। मुसलमान कामयाब होने लगे, होते गए होते गए, हत्ता के पूरी दुनिया में इस्लाम का सूरज आ गया। और वो वक्त आया कि जब मुसलमानों को ना किसी ने कभी टेररिस्ट कहा था, ना फंडोज कहा था, ना उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट कहा था, क्योंकि उनके जुबानों पे मुसलमानों के अदल और इंसाफ के तस्करे होते थे, उनके किरदार की धूम होती थी। अभी किस्सा हमने सुन भी लिया, सफवान और उमैर का किस्सा क्या बताता है कि जिसकी गवाही दुश्मन दे दे वो सच्चा ही होगा। सिराज मुनीरा की जिंदगी में कई इल्जाम लगे, आपके सामने भी, बात में भी, आज भी लगते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी में कभी किसी को जुर्रत ना हुई आपके बारे में कोई गलत लफ्ज बोलने की। आप जंगजू हैं, आप खून के प्यासे हैं, आप ब्लड थर्स्टी हैं, आप तो जंगे लड़ लड़ कर हमें ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कोई लफ्ज़ जो आज मुसलमानों के लिए लिया जाता है इस नबी के लिए नहीं लिया गया। किसी ने आपकी ज़िंदगी में आपको निकाला कि दुश्मनों में घिरे हुए थे? आपके तो दुश्मन की नज़र तो गर्दन पे होती है, रकीब यानी आपकी शारक को पकड़ना चाहता है, वो तो आपकी एक एक छोटी छोटी गलती को पकड़ना चाहता है कि अल्लाह करे आप गलती करें, गलती ना करो तो उसको मज़ा ही नहीं आता कि आज कोई गलती नहीं हुई इनसे, गलती से भी गलती नहीं हुई। ऐसे लोग जो नबी की एक एक चीज ढूंढ रहे थे, उन्होंने आज तक आपको वो इल्जाम नहीं दिया जो आज दिया जा रहा है। चलिए, आपके पास सहाबा कराम, फतुहात पे फतुहात, जंगों पे जंगे, कोई जंगों का सिलसिला नबी की जिंदगी में खत्म तो नहीं हुआ? हाँ, बदर से तबूक तक एक बड़ी लाइन आपकी कवर हो गई, लेकिन बड़ी बड़ी जंगे आपके बाद में हुई। किसी ने सहाबा के लिए कोई ऐसा नाम मुतय्यन नहीं किया, बल्कि सहाबा के बाद के लोगों को ले लीजिए, बड़े बड़े हुक्मरान गुजर गए, लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते थे। क्यों? इसलिए कि उस वक़्त तक सहाबा ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने और हमारे सलफ सालेहीन ने पूरा दीन लिया। उन्होंने फातिहा से नास तक को लिया, उन्होंने अकायद से लेके इबादत से लेके अखलाकियात और मामलात को सीधा किया। वो सिर्फ कुरान के पढ़ने वाले नहीं थे, वो कुरान के आमिल भी थे। वो वर्सेस टू रीड नहीं, वो वर्सेस टू एक्ट अपॉन करते थे। कारी नजर आता है हकीकत में कुरान की मिसदाक थे। जब पूरे दीन को लिया तो फिर क्या हुआ? पूरे दीन पे अमल हुआ, अपने अकवाल को अपने आमाल से साबित किया। वो दुश्मनों से मारूब नहीं थे, उनके ऊपर ईमान का रोब था। लेकिन जब हुब्बे दुनिया ने जगह ले ली हुब्बे आखरत की, जब कराहियतुल मौत होने लगी और हुब्बे दुनिया बढ़ गई और वहन की बीमारी आ गई, जब दुनिया को वो फन प्लेक्स और आखरत को कैद समझने लगे, जब मुसलमान कुरान की रूह को भूल गए, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने पे जोर रहा, तो हम बदल गए। जब तक मुसलमान कुरान की रूह को समझकर इसके साथ चिपके रहे, जब तक कुरान उनकी जिंदगियों के अंदर एक नेविगेटर था, वो खुलूफ़े सिलमी की काफ़ा था। अफतू मेनून अभी बात दिल किताब वाली कैफियत नहीं थी कि रंग बिरंगा मुसलमान बन गया, पिक एंड चूज करने लगा। उस वक़्त तालीम भी था और तज़किया भी था, तरबियत भी थी। मुसलमान तालीम के साथ तरबियत लेते, तज़किया की मंजिलें अबूर करते करते इस्लाम की चोटी यानी जिहाद और जिहाद की भी आला किस्म क़िताल तक पहुँचते थे। वो इस वक्त तक इस्लाम की मुंह बोलती तस्वीर थे, वो हर चीज़ में सच्चे थे। वो सादिक और अमीन के मोतकदीन में से नहीं थे, वो आपके फॉलोअर्स थे। वो दुश्मन से भी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर न जाने हमें क्या हो गया, हमारी सुबह रात में बदल गई, हमारी ज़िंदगी एक मौत की सूरत में ढल गई। हम सो गए, हम सुस्त हो गए, हमारे अंदर ख्वाहिशात सराहट करने लगीं, हमारे रगो रेशे में दुनिया की मोहब्बत ऐसे आ गई जैसे कुत्ते के काटे के अंदर जहर आ जाता है। दुनिया दुनिया भर गई, फिर दुश्मनों के दिल से हमारा रोब निकल गया, फिर हम एक उम्मत बनने की बजाय एक भीड़ बन गए। हम भेड़ चाल चलने लगे, हम दूसरों के नक्शे पा पे चलने लगे। नमाजों में कहते थे दिनों सिरात अल मुस्तकीम के बाद सिरात अल लजीना अनमत अलैहिम, लेकिन हकीकत क्या थी कि दुआलीन और मगदूब अलैहिम के पीछे चलने लगे। हम लीडर्स बनने की बजाय फॉलोअर्स बन गए, हम गैरों की आंखों से देखने लगे, हम गैरों के कानों से सुनने लगे, हम गैरों की जुबान बोलने लगे। हम अपनी बोली भूल गए, हम अपना पहनावा भूल गए, हम अपने दीन पर फख्र भूल गए। और फिर हमारी उम्मत की रात गहरी से गहरी गहरी होती गई। हम दीन और दुनिया के अलूम से भी पीछे रह गए। दीन तो छूटा, दुनिया भी छूट गई, टुकड़ों में बट गए, फिर वारियत का शिकार हो गए। कभी आप सकूते हिस्पानिया तो पढ़िए, स्पेन का डिक्लाइन कैसा हुआ? अपनी ही रियासत को टुकड़ों में करके बेच के दुश्मनों के हाथों में दे दिया। हम विक्टिम बन गए। अब ये तो हो गया 1000 साल तक, जब मुसलमान दुनिया में सूरज बन के चमके, कि एक बादशाह ने अपने दौर में कहा था कि बादल तू जहाँ भी जाके बरसेगा तेरा खराज तो मुझे ही मिलेगा, तू जा नहीं बरसता इधर तो ना बरस। यानी जैसे सूरज एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाता है तो उसकी रोशनी है, मुसलमान हिदायत का सूरज थे, वो सिराज मुनीर वाला काम कर रहे थे। वो दुनिया से कुफर को ख़त्म करते, जिधर से मुसलमान गुजरते इस्लाम आ जाता। कई लोगों ने नमाजें पढ़ता देकर जमात से मुसलमानों को इस्लाम कबूल किया, कहीं उनके मामलात को देखकर इस्लाम कबूल किया, कहीं उनकी तलवारों के डर से, कभी उनकी बेतनाई को देखकर इस्लाम कबूल किया। बादशाहों के दरबारों में भीगी बिल्लियां बन के नहीं जाते थे, आंखों में आंखें डालते थे। एक खास थी, लोग कहते थे इनको क्या हो गया, इनको तो मौत से भी डर नहीं लगता, इनको धमकियों से डर नहीं लगता, इनको रग़बत को, इनको लालच काम नहीं आता, क्योंकि वो उस वक़्त मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे। तो आज फिर इलाज क्या है? कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़वाइए, कुरान को समझिए, कुरान पे अमल कीजिए और इस कुरान को आम करते हैं। कुरान के वो 5 हकूक, हम एक दो पे उलझे हुए हैं। हमने कुरान पाक के सिर्फ पढ़ने पढ़ाने को समझना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ें छोड़ दी। तबलीग चंद लोगों का काम रह गया, जिहाद कुछ और लोगों की जिम्मेदारी बन गई, नमाज रोज़ा भी चंद लोगों का काम रह गया, सोशल वर्क कुछ और लोगों ने पकड़ लिया। और उसके बाद फिर हर इल्ज़ाम हम पर लगने लगा, हर गोली का रुख हमारी तरफ था। कोई इमारत गिर गई तो मुसलमान का नाम, कोई जहाज गिर गया तो मुसलमान का नाम। क्योंकि हम लेने वाले बन गए, भिखारी बन गए, भीख का कासा हमारे हाथ में था, देने वाले बनने की बजाय लेने वाले बन गए। वेस्ट ने तरक्की की, उन्होंने दुनिया में जो काम किया क्वालिटी का किया, हर बड़ी इन्वेंशन उन्होंने की, पहले तो हम करते थे। सारे उलूम तो इस्लाम ने दिए, ये माशर्ती उलूम ले लीजिए, ये ज्योग्राफी ले लीजिए, ये अलजेब्रा ले लीजिए, असूले अर्शमीदस ले लीजिए, ये अलबेरूनी का नाम आज किधर है, हमारी नस्लों को पता है। आज एप्पल का नाम तो हमारे बच्चे बच्चे को पता है। आज बड़े बड़े नाम लोगों के दिमागों पे, कैट स्टीवन और फुलां और फुलां, क्या हमारे बच्चों को ये माजी के मुसलमानों के नाम पता है? हम दुनिया के पीछे हाँ अपने कांपने लगे। पिछले पारे में एक मिसाल भी पढ़ के आए हैं, राल टपकती रही हमारी, वलादियात दबहन की तरह हमारे घोड़े मैदाने जंग में ना निकले, हमारी सारी भाग दौड़ सिर्फ दुनिया के लिए हो गई, तो फिर क्या हुआ, गलबा इस्लाम का काम पीछे पड़ गया। फिर ये बातें जहनों में आने लगी कि रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। ये शिकवे शुरू हो गए, हर गोली का रुख, हर ताने का रुख, हर इल्जाम का रुख, हर गलती का रुख हमारी तरफ हो गया, और सिराज मनीरा की तिनका तिनका जोड़कर बनाई हुई उम्मत बिखर गई। खसो खाशाक से हल्के हम हो गए, हमारी कोई सेह ना रही। आज आप देखिए, मुसलमान तो बजाहर कामयाब है, लेकिन इस्लाम नाकाम दिखता है लोगों को। अमीर तीन मुल्कों से लेके अमीर तरीन शख्सियात मुसलमानों की है, लाइफस्टाइल मुसलमानों का जो लैविश है वो तो दूसरों का कहाँ होगा। और फिर उसके बाद मेरा जिसम मेरी मर्जी शुरू हो गई, मेरा घर मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ, काम बहुत है। अल्लाह ताला ने इनायात में माले गनीमत की बांट के दौरान कई सबक दे दिए। जरा से इनायात के अंदर से अपना दिल दिमाग निकाल कर फील तो कीजिए। ऐसी स्ट्रेटेजी तो आज दुनिया के किसी बड़े मुल्क के पास नहीं है। बड़ी से बड़ी सुपर पावर में ये नहीं है कि वालम अन्नमा गनीम तो मन्नमा की बातें नहीं उसमें, क्योंकि माल एक अमानत है। एक होता है जाती माल, मेरा और आपका, एक होता है इज्तमाई माल। यहाँ इज्तमाई माल की बांट के दौरान जो बात बता दी, तो उसमें एक बड़ा जुमला लिख लीजिए, ये जेम है आपके लिए, कि मेरा माल मेरी मलकियत नहीं, बल्कि मेरे पास मेरे रब की अमानत है। कुछ ऐसे बंदों के लिए रख दी जिनको कम मिला, कहा जाओ खिलाओ पिलाओ उनको, भूखों की मदद करो, यतीमों मिसकीनों को दो, और इस माल को लेके जाओ और अल्लाह के दीन पे लगा दो। जाओ उन मुजाहिदीन को खिलाओ जो अपनी जगहों पे खड़े हैं सफ़े बांध के, कान न बुझानु मरसूस, और पीछे उनके बीवी बच्चे भूखे हैं। लेकिन जब हमने अपने माल को अपना समझा, जब हमने माल को, घर को, गाड़ी को, कोठी को, बंगले को अपना समझा, तो फिर क्या हुआ, इसी की हिफाजत हमारी जिंदगी का मकसद बन गई। तो माल बुरा नहीं, लेकिन माल किन असूलों पर मिले, खयानत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, और खास तौर पे इज्तमाई माल, ये तो बहुत बड़ी चीज है। याद रखिए, कोई किसी एक का 1 डॉलर चुराएगा ना, तो वो एक बंदा उसके पीछे भागेगा कि मेरा डॉलर दे दो। जब लोग इज्तमाई माल चुराते हैं, कल माले गनीमत जंगों का माल था, आज इज्तमाई माल की कितनी किस्में, हुकूमत का टैक्स, हुकूमत का खजाना, लोगों की खून पसीने की कमाई, और इज्तमाई माल में वो सारी डोनेशंस भी आती हैं जो लोग आप पे एतमाद करते हुए दीन के नाम पे देते हैं, मस्जिदों के चंदे, मदरसों की किफालतें। ये क्या है, ये इज्तमाई माल है तो ये चोरी ज्यादा खतरनाक है। हमारे यहाँ जब तालीम आम हुई, तजकिया तरबिया कम हुई, तो हम मस्जिदों की चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम मदरसों में भेजी हुई डोनेशन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हर एक अपने दामन में झांके। किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, किसी को किसी पे उंगली रखने की इजाजत नहीं, कोई किसी के किसी खर्च पे एतराज नहीं कर सकता अगर उसने खुद नहीं दिया। आज इज्तमाही तौर पे आप देखिए, हम माले मुफ्त दिले बेरहम का शिकार हो गए। पार्क्स के अंदर जो हालात हैं वो देख लीजिए, एयरपोर्ट्स की हालत देख लीजिए, और इसी तरह गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स का हाल देखिए। इसलिए फिक्र कीजिए इज्तमाही माल की जिम्मेदारियों की। एक एक टिश्यू पेपर कोई अगर ला कर आपके स्कूल में रखता है, तो कुछ पैसा लगा सिर्फ इसलिए कि आप एक ही जगह 6 पकड़ ले, नाक आपकी थोड़ी सी बह गई, आपने उसको जरा से श्रुक किया और फेंक दिया, अभी उसके कितने किनारे तो सूखे हैं। आप एक एक की जगह 4-4 प्लेटें नीचे रख लें, ताकि मेरा भरा हुआ खाना कहीं गिर ना जाए। एक एक कुर्सी का बिल किसी ने दिया, और आप इन कुर्सियों पर बैठ के अपने सेल फोन पे गंदबला देखते रहे। बिजली का बिल कोई देता है कि एक बल्ब से 10-10 बल्ब जलाते हो? क्यामत के दिन हम किस किस का हिसाब देंगे? तो वालमो, इल्म लो, हुक्म है इधर, और जान लो, वार्निंग भी है। फिर आप देखिए कि माले गनीमत के 5 हिस्से, इससे पता चलता है कि इस्लामी रियासत एक वेलफेयर स्टेट होती है। 4 हिस्से फलाह बहबूद पे और 1 हिस्सा मुजाहिदीन पर। फिर इस पूरी जंग के अंदर नबी सल्लम की प्लानिंग दिखती है, लेकिन अचानक हालात ऐसे बदले कि सोचा भी नहीं था गजवे बदर होगी। तो यहाँ से एक अमल का नुक्ता लिखिए, प्लानिंग अच्छी चीज़ है मगर कभी कभी अचानक सूरत हाल सामने आ जाती है। लीडर को पूरा हक हासिल होता है कि वो क्या फैसला करे, रुकना है नहीं रुकना, आना है नहीं आना, थोड़ा और वक्त लेना है नहीं लेना, बैठना है नहीं बैठना। तो मुश्किलात को खुशी से कबूल कीजिए, हम आसानियों के तलबगार होते हैं। अल्लाह ने इस पहले रुकू में हमें बता दिया कि हर जगह आसानियां नहीं चलेंगी। तुम तो चाहते थे कि माले गनीमत वाला बड़ा हिस्सा तुम्हें मिल जाए, जो कि अबू सुफियान लश्कर लेकर आ रहे हैं, अल्लाह ने तुम्हें अबू जहल के गिरोह से मिलवा दिया। तो मुश्किलात के रास्ते से जन्नत और कामयाबियों को हासिल कीजिए, रदी तो बिल्लाही रब्बन, लीडर्स के फैसलों को कबूल कीजिए। और यहाँ मन हलका वैजिना की बात है, काफिर को पता हो कि मैं कुफर के रास्ते में दुनिया के रास्ते में मर रहा हूँ, मोमिन को पता हो कि मैं अल्लाह के रास्ते में और आखिरत के लिए लड़ रहा हूँ। यही दलील है, अबू जहल मरा तो कुफर के रास्ते में मरा, उसको यकीन था कि मैं अपने कुफर पे जान दे रहा हूँ, और अगर मुसअब बिन उमैर अगली जंग में जाएंगे तो उनको पता है कि मैं अल्लाह के लिए जी रहा हूँ। तो दुनिया में अपने नसीब के मुताबिक मिलेगी, आखिरत हमें अपनी कोशिश के मुताबिक मिलेगी। आइए जरा इन आयात को पढ़कर अपने आप से चंद सवाल करें, पूछिए खुद से, मैं किस लिए जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, गलबा इस्लाम या सिर्फ अपना घर, हाय मैं मर गई तो बच्चों का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, पल जाएंगे, शौहर को कह दें तीसरे दिन शादी कर लेना तो नई माँ अच्छी होगी इंशाल्लाह, मेरे घर का क्या, कुछ भी नहीं होगा और भी अच्छा होगा, आपने जो 20 साल पुरानी चीजें संभाली है सब फेंक देंगे लोग के, चलो गई अब इसको संभालने वाली, अब साफ सुथरा घर कर दो, तो घर और बच्चे मकसद नहीं है। जो मकसद हयात होता है ना वो अक्सर मुंह पे रहता है, हम अपनी गुफ्तगू के आईने में अपना मकसद हयात पहचाने। हर वक्त कुरान की बातें, पढ़ने की बातें, मीटिंग की बातें, मस्जिद की बातें, मदरसे की बातें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नूर को फैला रहे हैं आप, और हर वक्त बच्चे, घर, कपड़े, जूते, तो फिर आपको समझिए। दूसरों से पूछिए बताओ मैं कैसी हूँ, मोमिन मोमिन का आईना ये हदीस है, इसको अपने सामने रखिए और अपने इर्द गिर्द वालों से पूछा करें कि मेरी भाग दौड़ से आपको क्या लगता है मैं किधर जाऊंगी, क्योंकि एक मोमिन दूसरे मोमिन को गलत तरफ जाते हुए रोक लेता है। तादाद की कसरत और किल्लत मकसूद नहीं, मतलूब नहीं, तादाद का गर्रा नहीं, असल मतलूब क्या है कि दीन फैले, कम लोगों से फैल जाए, कम से कुफर ख़त्म हो जाए, मैदान जंग में फतह हो जाए, दुश्मनों को निकाल दो, थोड़े लोगों से भी निकल जाएंगे, ज़्यादा से भी निकल जाएंगे, क्योंकि मोमिन गिना नहीं तोला जाता है। आज बिलियन मुसलमान है, ये हेड काउंट है, किस हद तक ठीक है हमें नहीं पता, लेकिन आप उनको एक पलड़े में डालकर देखिए तो आपको अंदाज़ा होने लगेगा क्या होगा। हम नजर आने वाली चीज़ों से अपने कामयाब होने का अंदाज़ा लगाते हैं, हमारे सामने क्या हो रहा है, कितने लोग आते हैं, कितने लोगों ने सुन लिया, हाय ज़रा कुछ तो बताए, कोई खबर तो आए, कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात कहकर मैं भी आगे जाऊँ कि रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह तू कबूल कर ले, हमारी ज़िंदगी में कोई सुने ना सुने। इब्राहिम की ज़िंदगी में कितने लोगों ने हज किया और उमरा किया, कितनों ने लब्बैक कहा, आज जाके हरम को देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, इस वक्त हरम जैम पैक है, यानी जिसको आप कह सकते हैं मैदान हशर के बारे में जो हदीस आती है ना कि सिर्फ 2 कदम रखने की जगह मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल पैक। तो मैं अक्सर सोचती हूँ जब उसको देखती हूँ कि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीने को कितनी ठंडक पड़ती अगर उनको ज़िंदगी में ये पता चल जाता। तो आपने मैंने आज खलूस के साथ काम करना है, बाकी सब अल्लाह पर डाल दीजिए, हेड काउंट्स नहीं बनना, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो काम करें पूरा करें, इबादत हो तो पूरी दिल से करें, मर्द कमाई करें तो पूरे दिल से कमाएं, आप सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं, पूरे दिल से बनाई, इबादत समझ के अपनी ज़िंदगी गुजारिए, कामों को अधूरा ना छोड़िए, और कामों के दौरान जिक्र करते रहें, हाथ काम की तरफ और दिल रब की तरफ, फिर इख्तलाफ राय हो तो भी दिल ना फटे, ये भी इस गज़वे बदर का सबक है। हाथ में हमेशा एक बैंडेज रखें, और वो क्या है, उल्फत की बैंडेज, अल्लाफ बैना कुलूब, इसी को अल्लाह ने आगे आपके मेरे लिए रखा है। हम सारा दिन जुमले बोलते हैं, मेरा तो दिल ही टूट गया, मैं कभी नहीं माफ़ करूंगी, निकाल के फेंक दीजिए ऐसे जुमलों को, घरों में दिल फटते हैं और फिर पूरी उम्मत फट जाती है। और याद रखिए शुरू में सिर्फ एक दरार पड़ती है और होते होते फिर पूरा कप टूट के 2 हिस्सों में पहुंच जाता है, और फिर अगली बात सब्र सब्र सब्र। उम्मत को इस वक्त सब्र सिखाइए, पुर उम्मीद रहिए, मायूस ना हो। और इसमें हमने देखा कि शैतान की सूरत में एक सरदार आ चुका था, और जो ही फरिश्तों को आते देखा तो भाग गया। क्या पता चला कि काम के आगाज में बड़े बड़े दावे ना करें, जब कोई आपसे काम हुआ ना सब देख लेंगे, चांद चढ़ता है सब देखते हैं, सिर्फ काम पे नजर रखिए, तो अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे लेने वाला बनाए। और आखिरी बात अफसोस के साथ कहूँगी, अबू जहल में ऑलमोस्ट हजरत उमर जैसी खूबियां थी, पर्सनैलिटी टाइप दोनों का एक ही था, लेकिन अफसोस कुफर की दलील पे मर के बदर के कुएं में चला गया, और उमर हाथ में नंगी तलवार लेकर इस्लाम की तरफ आए और फिर वो इस्लाम की तलवार बन गए। अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह अगर मेरे अंदर खैर है, खूबी है, तो उसको इस्लाम के लिए इस्तेमाल करना, ना कि इस्लाम के खिलाफ। ये था पूरे पारे का एक निचोड़। अब इसी से आगे मजीद बातें सूरत अनफाल तक चलती जाएंगी, और जहाँ सूरत तौबा शुरू होगी वहाँ गजवे तबुक होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने जो बातें सुन ली हैं इसकी रोशनी में अब एक एक आयत को समझना आपके लिए आसान होगा। आयत नंबर 53 सूरत अल अनफाल, ज़ालिक बिअन्नल्लाह लम यक मुग़य्यिर नेमा। यहाँ एक जुमला लिखना चाहें तो पहले ही लिख लीजिए, अल्लाह के यहाँ नेमत के मिलने का कोई असूल नहीं है। आपको मुझे हवा मिल रही, पानी मिल रहा, शक्लो सूरत मिली, औलाद मिल जाती, किसी को देता अंगूठा छाप, बंदे को अल्लाह ताला करोड़पति बना देता है, और इतने पढ़े लिखे सड़कों पर रुलते हैं। नेमत मिलने का कोई असूल नहीं, लेकिन नेमत के कायम रहने का असूल आपको मुझे इस आयत में पता चल रहा है। आइए सुनिए। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फरमा कर फिर बदल दे, जब तक कि वो खुद अपनी इस हालत को ना बदलें जो कि इनकी अपनी थी। और ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। कदाबी आली फिरौन, मिसल हालत फिरौनियों के और इनसे पहले के लोगों के, कि उन्होंने अपने रब की बातें झुठलाई, बस इनके गुनाहों के बायस हमने इन्हें बर्बाद किया और फिरौनियों को डबो दिया। ये सारे जालिम थे, तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो कुफर करें फिर वो ईमान न लाएं। नोट कीजिए इस आयत को, कितनी बड़ी बात अल्लाह ने बता दी। इसलिए कि जो सर अपने मालिक को ना पहचाने उससे तो वो जानवर बेहतर है कि जो अपने मालिक के पीछे पीछे भागता है। फिर आगे फरमाया, अल्लज़ीन आहदत मिनहुम, जिनसे तुमने अहदो पैमान कर लिया फिर भी वो अपने अहदो पैमान को हर मरतबा तोड़ देते हैं और बिल्कुल परहेज नहीं करते, बस जब कभी तो लड़ाई में इन पर गालिब आ जाए तो इन्हें ऐसी मार मार के इनके पिछले भी भाग खड़े हों, हो सकता है कि वो इबरत हासिल करें। यानी ये नहीं कि बड़े प्यार से नरम नरम चाल चलो और नरम नरम हाथों से मारो, जब मैदान जंग में जाएंगे फिर क्या नरमी। देखिए दुश्मन को मारने के लिए सख्ती का हुक्म है, क्यों कि टॉर्चर ना दो बल्कि फिर अपनी जुर्रत दिखाओ। तो मैदान जंग की नरमी सख्ती और है, मैदान तबलीग की नरमी सख्ती और है, मैदान तरबियत की सख्ती और है, रिश्तों को निभाते हुए नरमी सख्ती और है। हम एक लाठी से हर एक को नहीं हांक सकते। और अगर तुझे किसी कौम की खयानत का डर हो तो बराबरी की हालत में इनका अहदनामा तोड़ दे। अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और रह गए जो काफिर, तो काफिरों के लिए अल्लाह का हुक्म, वला यहसबन्नल्लज़ीन कफरू सबकू, काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले, यकीनन वाजिस नहीं कर सकते। तुम इनके मुकाबले के लिए अपनी ताकत भर कुव्वत की तैयारी करो और घोड़ों के तैयार रखने की, कि इससे तुम अल्लाह के दुश्मनों को खौफजदा रख सको। और इनके सिवा औरों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह इन्हें खूब जान रहा है। जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्फ करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। क्या पता चला कि अल्लाह के रास्ते में तैयारी करो, वेपन्स बनाओ, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। ये नहीं कह दिया कि मुसलमान इतना भोला होता है कि आप तो जो मर्जी करते रहें और ये और वो, और हम हथियार नहीं बनाएंगे। तो याद रखिए कि ये टिट फॉर टैट बराबरी की बुनियाद पे हैं कसास और हुर्मतें। वाइद लहुम मस्तता तुम इन कुव्वतें व मेर रिवातिल खैल, कितनी हदीसें हैं ऐसी कि जिसको देखकर आपका दिल करता है अपना सब कुछ पकड़कर हथियार खरीदने के लिए दे दें। पर किसको दें, कौन है इधर हमारे पास जो लड़ रहे होते हैं, जो बेचारे मुजाहिदीन हैं, उनमें जितना दे सकते हैं दीजिए। क्योंकि दुश्मन को जब पता चल जाता है ना कि मुसलमान के पास भी हथियार है तो जरा उसकी जरूरत बचती है। कहते हैं कि हाथ में छड़ी हो ना तो रात को भी बाहर जाएं तो कुत्ता नहीं भौंकता, क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि ये डंडा मारेगा मुझे। हथियार दिखाने के हैं। याद रखिए इस्लाम क्या चाहता है, हथियारों के इस्तेमाल से पहले उसका इजहार करो। जितना ज्यादा हथियार आप चलाएंगे उससे ज्यादा उनका दिखाना जरूरी है। तो मुसलमान को पूरा हक हासिल है कि वो इन चीजों को ले। अल्लाह ताला ने नेमतों को कायम रखने के ये असूल बताते हुए आपको मुझे बता दिया कि जितना शुक्र करोगे और जितना अपनी नेमतों को अल्लाह की रजा में इस्तेमाल करोगे अल्लाह उतना और देगा। लेकिन याद रखिए जब नेमतें जवाल पजीर हो जाती हैं तो वो अपने इनफरादी इंजाम को तो थोड़ा बहुत समझ लेती हैं लेकिन इज्तमाई इंजाम को नहीं समझती। ये आज आप और मैं एक उम्मत मुस्लिमा के बिगाड़ को जो देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं हुआ, ये राइज एंड फॉल ऑफ द नेशंस है, अरूज और जवाल है। हम जब तक हथियारों के साथ खेलते थे, जब हमारी माँ के दूध में मुजाहिदीन की मोहब्बत थी और जब बापों की कमाई में हलाल रिस्क था, गैरत थी भाइयों की आंखों में, हम भी इज्जत वाले थे। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हम कमजोर हो गए। शमशीरों सना की जगह ताऊस और रबाब आ गए। फिर हम मेहनती नहीं रहे, हम सुस्त हो गए, बेतौफीक हो गए, हम ऑर्गेनाइज नहीं रहे, हमारा हर काम मीडियोकर्स वाला, बीच का। वो कहते हैं ना कि थमता न था कारवां हमारा, और आज क्या हो गए, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था, आज परदेश में क्या बन गया।